हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा प्रभुपदा जय प्रभुपदा। जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव। निताई गौर प्रेमानंदे श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की, श्री कृष्ण बलराम की, निताई गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा। तो आज के इस 23 जनवरी के शाम की सभा में आप सबका स्वागत है। कल हमने ब्रह्म सम्मोहन लीला के बारे में वर्णन किया था। कुछ दो तीन चीजें उसमें बताने की रह गई थी। वो ये है कि जब ब्रह्म सम्मोहन लीला हुई, जिस दिन ब्रह्मा जी ने बछड़े और गाय के बछड़े और ग्वाल वालों को चुराया, उस दिन बलराम जी का जन्मदिन था। इसलिए जब सब ग्वाल बाल चुराए गए थे उसमें बलराम नहीं थे। एक बहुत सिग्निफिकेंट बात है। तो बलराम जी का उस दिन 5वां जन्मदिन था, 5th बर्थडे। इसलिए बलराम जी पीछे रह गए थे। रोहिणी मैया ने उनको कहा कि आज आप नहीं जाएंगे वत्सचारण करने के लिए, क्योंकि उस समय गोपाल लीला आरंभ नहीं हुई थी, वत्सपाल लीला आरंभ हुई थी। वत्सपाल लीला भगवान को 3 साल में बछड़ों का जिम्मेदारी दे दिया गया था। और जब भगवान के 5 साल पूरे हुए, उसके 5 साल के बाद वाले कार्तिक में गोपाष्टमी के दिन बड़े गायों की जिम्मेदारी सौंपी थी। तो 5वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में रोहिणी मैया ने बलदेव भैया को घर पर रोका। किस लिए रोका? क्योंकि जन्मदिन कैसे मनाया जाता है इसका एक उदाहरण ब्रज में हम देखते हैं। आजकल की संस्कृति में जन्मदिन में कैसा होता है कि हम सब लोग अपने जन्मदिन पर सब लोगों से गिफ्ट की उम्मीद करते हैं कि सब लोग मुझे गिफ्ट देना चाहिए। लेकिन ये संस्कृति पाश्चिमात्य संस्कृति है। ये विदेशी संस्कृति है जिसमें हम जन्मदिन के अवसर पर दूसरों से उपहार की उम्मीद करते हैं। लेकिन वैदिक संस्कृति यह है कि जन्मदिन के समय जिसका जन्मदिन है वो दूसरों को उपहार देता है। सब लोग आगे आइए प्लीज, कृपा करके आगे आइए। सब लोग बहुत आगे आइए, बहुत पीछे लोग कभी आ रहे हैं अभी, और प्लीज कम फॉरवर्ड, कम क्विकली। तो रोहिणी मैया ने उस दिन बलदेव जी के हाथों से सभी ब्राह्मणों को, संतों को और ब्रजवासियों को उपहार देने के लिए उनको रोक लिया। और 5वें दिन फिर ब्रह्मा जी ने सब बालकों को छीन लिया, छुपा लिया। और 1 साल तक, पृथ्वी के 1 साल तक ये सब वैसे ही रहे ब्रह्मा जी के गुफा में। कहाँ पर? ब्रह्मलोक में। और यहाँ का 1 साल ब्रह्मा जी का 1 क्षण होता है। 1 क्षण में लौट के आए थे देखने के लिए, लेकिन 1 साल बीत गया था। तो ब्रह्मा जी के 6वें बर्थडे के दिन, ये फिर बलराम जी के, मैंने क्या कहा, हाँ सॉरी, बलराम जी के 6वें जन्मदिन के दिन ये लौट के आए थे सब लोग। इसका कारण ये था कि जब ये बीच में एक दिन क्या हुआ, जब ये लीला चल रही थी, सभी ग्वाल बाल कृष्ण थे, सभी बछड़े भी कृष्ण थे। तो उस दिन कृष्ण भी अपने बछड़ों को लेकर गोवर्धन की तरफ गए थे। अब बड़े ग्वाल बाल अपनी बड़ी गाय बैल को लेकर भी गोवर्धन में गए थे। अभी छोटे बछड़े जो थे वो पहाड़ पर चढ़ नहीं सकते, इसलिए वो नीचे चर रहे थे, और बड़ी गाय जो ऊपर जाके भी चर रही थी। तो अचानक जो बड़ी गाय थी उन्होंने अपने बछड़ों को नीचे चरते हुए देखा, तो उनके अंदर ऐसा आकर्षण निर्माण हुआ अपने बालकों के लिए, तो वो पहाड़ से उतरती हुई दिशा में भागने लगे। कितना डेंजर होता है उतरती हुई दिशा में भागना, इस बहुत डेंजरस है वो। तो उनका जो वेग था अपने बालकों की ओर भागने का, वो देखकर बलराम जी का आश्चर्य हुआ। अरे इतना आकर्षण अपने बालकों के प्रति, ये बलदेव जी को आश्चर्य हुआ। तो बलदेव जी ने आकर कृष्ण के कान में पूछा, ये क्या है, अब मैं पहली बार देख रहा हूं कि इतने सारे बैल गाय अपने बछड़ों के पीछे ऐसे भाग रहे हैं जैसे कि कभी देखा ही नहीं उनको, ऐसे लगा। तो तभी कृष्ण भगवान ने उनके कान में कहा था कि ये सब मैं ही हूं। तब उनको समझ में आया कि क्योंकि वो बछड़े कृष्ण थे, अपने बछड़ों से भी उनको कृष्ण से अधिक प्रेम था गायों को, और अपने बालकों से भी अधिक प्रेम गोपियों को कृष्ण पर था। तो वो अद्भुत आकर्षण देखकर बलदेव जी को संदेह उत्पन्न हुआ। तो बलदेव जी ने प्रश्न किया उनको, तो बलदेव जी को कृष्ण ने बताया कि ये सब मैं ही हूँ, ऐसे ऐसे हुआ था, ब्रह्मा जी ने सब बछड़ों को चुलाकर अपने लोक पे रखा है और ये समय उसका चल रहा है। ये एक बात थी जो मैं कल नहीं बताया आपको, बहुत सुंदर है। जैसे अभी ब्रह्मा जी का ऐसा विचार था कि जैसे ही मैं बछड़ों को चुराऊंगा ना, अभी देखो जितने भी छोटे बालक हैं ब्रज में वो सारे कृष्ण के साथ घूम रहे हैं, एक ही बलदेव बर्थडे के लिए पीछे हैं, बाकी सब लोग कृष्ण के साथ हैं। मतलब एक भी बालक अपने घर पे नहीं है, और समझो वो एक भी बालक घर पे लौट के नहीं आता है सिवाय कृष्ण के, तो हाहाकार मचेगा ना, अरे कृष्ण के साथ गए थे, यशोदा कहाँ गया, कृष्ण तो आ गया, बच्चे कहाँ हैं। तो ब्रह्मा जी को ऐसी उम्मीद थी, ऐसे एक अपेक्षा थी कि ब्रज में हाहाकार मचेगा जब मैं उनके बछड़े चुराऊंगा, और बछड़े भी और बालक भी। लेकिन ब्रज में क्या हो रहा था, ब्रज में तो दुल्हनों की डोरियां उठ रही थी, पंगते झड़ रही थी, वाद्य चल रहे थे, उत्सव मनाया जा रहा था, सब लोग आनंद में थे। ब्रह्मा जी खुद हैरान हो गया, अरे इनके बच्चे मेरे पास में, ये सब शादियां अरेंज कर, आपसे आपका बच्चा गुम हो गया था, आप घर में शादी अरेंज करेंगे क्या, शादी पोस्टपोन करेंगे ना आप, शादी फिक्स भी होगी तो भी पोस्टपोन कर देंगे, कैसे कैसे शादी करते, इतने दुखी है, हमारा बालक गायब है, पता नहीं कहाँ है। तो ब्रह्मा जी को यकीन भी नहीं हुआ कि ऐसे भी हो सकता है कृष्ण, कभी ब्रह्मा जी का जो मस्तिष्क है ना, जो दिमाग है, वो बहुत ही श्रेष्ठ तरीका का दिमाग है। आप सोच सकते हैं ना, पूरे 14 लोगों के अंदर जितने प्रकार के लोग हैं, देवताओं में भी कितनी जातियां हैं, है ना, गंधर्व है, यक्ष है, किन्नर है, किम पुरुष है, चाणूर है, चारण है, विद्याधर है, आप लिखते जाइए कितने प्रकार के देवता हैं ऊपर, कितने प्रकार के मानव हैं, कितने प्रकार के राक्षस, दैत्य, दानव, फिर कितने प्रकार के जानवर हैं, इतनी जातियां हैं, प्रजातियां हैं, उनकी स्पीशीज हैं, 84 लक्ष योनियों में कितने अनंत जीव हैं, हर एक को अलग अलग बनाना है। तो ये सब चीज़ के लिए कितना श्रेष्ठ प्रकार का दिमाग भगवान ने हमको दिया होगा, लेकिन वो दिमाग के अंदर भी ऐसा कभी कल्पना नहीं आया कि ये ऐसे बच्चों को अपने रूप में, अपने रूपों को विस्तारित करके बच्चे बनाएंगे वैसे के वैसे जैसे मैंने बनाए थे उनको, हुबहू एकदम। तो ये हम समझ सकते कि भौतिक बुद्धि और दिव्य बुद्धि, इसके अंदर ही अंतर होता है। दिव्य बुद्धि जो होती है ना, वो आत्मा और दिव्य भावनाओं के ऊपर चलती है। समटाइम्स वी कॉल इट एज इमोशनल कोशंट, EQ, जो शायद इंटेलिजेंस क्वेश्चंस नहीं होगा, IQ कहते हैं ना उसको, IQ से भी EQ को ज़्यादा मान्यता है, क्योंकि EQ जो है ना वो इतना भौतिक नहीं होता है, हृदय से संबंधित है। वो ब्रज के जितनी भी चेतना है, ब्रज में जितनी भी भाव है, वो सब हृदय पर चलते हैं, प्रेम पर चलते हैं। तो आप सोच सकते हैं ब्रह्मा जी को लग रहा है हाहाकार होगा, वहां पर डोलियां उठ रही है, पंगत झड़ रही है, सब आनंद बजा रहे, वाद्य बजा रहे, डांस कर रहे हैं सब लोग, तो बड़ा आश्चर्य हुआ उनको। ये विशेष बात है, देवता भी भगवान की जो लीला शक्ति है ना उसको समझ नहीं सकते। अब जब ब्रह्मांड का सबसे श्रेष्ठ ब्रेन जो है ना वो फेल हो गया, तो बाकी लोगों का क्या कहें, इंद्र के बारे में, चंद्र के बारे में क्या करें। तो भगवान ने एक तरह से हम सबके लिए बता दिया कि सारे देवताओं में श्रेष्ठ देवताओं से भी मेरे भक्त श्रेष्ठ हैं, जिनके लिए मैं ये सब कर रहा हूं, जिनके गौरव को प्रकट करने के लिए मैंने ब्रह्मा जी को परास्त कर दिया। और मैंने कल आपको एक वर्णन तो किया था कि गिडो गांव में गेंदोखर के किनारे क्या होता है, जब ग्वाल बालों की संगीत महफिल जमती है तो सारे देवता जो सबसे उत्कृष्ट गायक वादक हैं, नृत्यकार हैं, वो सब स्तब्ध हो जाते हैं, आश्चर्य से अहो आश्चर्यवत पूर्ण स्तब्ध हो जाते हैं। उनकी जो सर्वश्रेष्ठ कला है गायन वादन नृत्य की, वो दंग रह जाते हैं कि हम क्या करेंगे इसके सामने, अभी हम क्या अपनी कला दिखाएं, बता रहे आपके दिखाओ कला, लेकिन वो इम्पॉसिबल है उनके लिए। तो ये जो भौतिकता और आध्यात्मिकता के अंदर जो दिव्य फर्क है, ये हमें कृष्ण लीला में दिखाई पड़ता है, और वही हमको समझना है। भगवान बार 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 ये दिखाते हैं कि भौतिकता में श्रेष्ठ होने पर मैं रिझता नहीं हूं, मैं प्रभावित नहीं होता, मैं केवल हृदय के सरल प्रेम भाव से ही प्रभावित होता हूं। और ये भी दिखा दिया है कि हृदय के सरल भाव से इतना प्रभावित होता हूं कि ऐसा प्रेम जो करते हैं उनका मैं दास बन जाता हूं, उनके अधीन हो जाता हूं मैं, उनका ही उनके द्वारा नियंत्रित होता हूं मैं, जो वो कहेंगे वैसे मैं करता हूं। तो ऐसे जो भगवान है, जो परम परम शक्तिमान है, अनंत शक्तियों से संपृक्त है, सारे देवताओं को शक्ति देने वाले हैं, ऐसे परम शक्तिमान भगवान एक सिंपल गांव के गोपियों के ताल पर नाचते हैं और उनके हाथ से चचिया पर छाछ बीच बीच में पीते रहते हैं। तो ये भगवान बता रहे हैं कि विश्व भर के जितनी सिद्धियां हैं, जितनी भी शक्तियां हैं, जितना भी प्रभाव है, जितना भी अधिकार है, जितने भी जो भी चकाचौंध करने वाली चीजें हैं, वो मेरे भक्तों के प्रेम के सामने सब तुच्छ है। और वो है वृंदावन धाम जिसमें हम सब लोग आए हैं, वो वृंदावन धाम है जिसमें ऐसे लोग रहते हैं जिनके लिए अपने आप को बेचकर श्री कृष्ण यहां रहते हैं सबके आधीन होकर। ये इतने ब्रजवासी महान है कि कृष्ण भगवान को जब एक बार गोपियों ने कहा कि आपने तो बैल का वध कर दिया, हम आपसे बात नहीं करेंगे, हम तो आप हमारे लिए अछूत हो गए, तो ये कृष्ण भगवान जो जिनसे प्रत्यक्ष भय भी भयभीत है, यू नो द पर्सोनिफाइड फियर इज ऑल्सो फियरफुल, ऐसे व्यक्ति जिनसे व्यक्तिगत व्यक्तिमंत भय भी भयभीत है, वो गोपियों के इस शब्द से बहुत डरते हैं कि हम आपसे बात नहीं करेंगे। जब रोहिणी मैया और यशोदा मैया बालक कृष्ण को उनके बालकों के संग खेलते हुए बीच में दोपहर के भोज में बुलाने के लिए आ जाती हैं, पहले रोहिणी आती है, ये अनसुनी कर देते हैं, रोहिणी पुकारते जा रही है वो सुनते नहीं है, तो कह रही मेरे तो सुनते नहीं है रोहिणी, यशोदा मैया दीदी आप आ जाओ, तो यशोदा देवी आ जाती है और डांट फटकार से शुरू करती है अपना काम, तो तुरंत ही जाने लगते हैं वहां से। तब ग्वाल बाल क्या बोलते हैं, अच्छा तरीका है तुम्हारा, जब हार रहे हो तो माता का बहाना करके जा रहे हो, अभी हारते हुए अगर बीच में छोड़ के जाओगे तो कल तुम्हें खेल में नहीं लेंगे, ये हमारे कृष्ण के लिए सबसे बड़ी धमकी है। हिरण्याक्ष ने भी इतने कठोर वचन कहे थे, हिरण्यकश्यप ने भी कहे थे, रावण ने भी कहे थे, कभी भगवान को कुछ फर्क नहीं पड़ा उसका, ही डिडंट केयर अबाउट इट। जब नन्हे से ग्वाल बाल जब कहते ना कल आओगे ना तो नहीं लेंगे खेलने के लिए, तो वो लौट के आता है, माता की डांट सुनकर भी वापस लौट के खेलने आते हैं कि आज मैं अगर खेलते खेलते हारने के पहले ही चला गया तो फिर, तो इसलिए हारने के लिए भी वहां रहते हैं, हारते हैं फिर जाते हैं। कैसा भाव है देखो भगवान का, जो सबसे सामान्य दिखते हैं भौतिक दृष्टि से, गवाल गवाल ग्वाल वाल मतलब ना ब्राह्मण है ना क्षत्रिय है ना अधिकारी पुरुष है, गाय चराने वाले हैं, गोबर गौमूत्र में घूमने वाले लोग हैं, वो कितना प्रेम करते हैं उनको भगवान। अभी मैं बताता हूं कि वो ब्रजवासियों के प्रति भगवान कितना प्रेम रखते हैं। अभी होली का जो उत्सव होता है यहाँ पर, अभी होली का उत्सव में क्या थोड़ा बताता हूँ होली का बैकग्राउंड। होली में ना वो लट्ठा मार होली होती है, लड्डू मार होली होती है, छड़ी मार होली होती है, बहुत प्रकार की होली होती है यहाँ पर, और 40 दिन चलती है वो। कभी उनको अच्छी तरह बैठ के आपको उसका लंबा कथा करना पड़ेगा, पर संक्षेप में ये सारी होली जो होती है ना उसके अंदर स्त्रियाँ जो होती हैं गोपियाँ, वो ग्वाल बालों को मारती हैं, या तो छड़ी से मारती है, या तो लड्डू से मारती है, या तो डंडे से मारती है। हाँ, यहाँ पर डंडे से मारती हैं, उधर छोटी बठेन बड़ी बठेन जावट की ये लीला होती तो छड़ी, बल्लेव के औरंगाबाद में भी छड़ी होती है, और वो आते हैं तभी उनको लड्डू मारते हैं। लड्डू मार होली। इसमें सब कुछ एक होता है कि गोपियां जीत जाती है, ग्वाल बाल हार जाते हैं, गोपियां उनको इतना मार मार कर हरा देती है, और ग्वाल बाल भी बिल्कुल उसको सह करते हैं, उसको ढाल पकड़ पकड़ के फिर भी बाद में शरण आ जाते हैं और गोपियों को चरण छूते हैं। तभी एक ग्वाल बाल जो है ना जो हार जाते हैं ना वो उनको उपहार देते हैं, जैसे कि हार गया ना तो उसका एक टैक्स होता है ना, हार गया तो देना चाहिए। अभी एक ये गेम हो गया, अभी इसमें दोनों हार सकते हैं, दोनों जीत सकते हैं, दोनों को देना है। लेकिन कहते हैं कि जब कृष्ण भगवान होली खेलने के लिए नंदगांव से पूरे जुलूस के साथ सज धज कर श्रृंगार करके निकलते हैं, तो कहते हैं बॉक्स बॉक्स भर के वो जो गिफ्ट देने हैं ना वो भी लेके जाते हैं। समझे, आप चैंपियन टीम हो तो आप जीतने के बाद क्या करना उसका विचार करेंगे ना, हारने के बाद क्या करना विचार करेंगे। आप तो चैंपियन हो, आप तो जीतने ही वाले हो, तो आप जीतने के बाद क्या करना है, भाई झंडा फहराना है कि भाई फेटा ऊपर करना है, डांस करना है, क्या ऐसा सोच के जाएंगे, वो चीजें लेके जाएंगे ऐसे कुछ जो विजय को क्या प्रकट करने के लिए होती है। कृष्ण भगवान हारने के बाद क्या होने वाला है उसकी तैयारी करके जाते हैं। और आप होली की लीला को बारीकी से देखेंगे ना तो सारा होली का आयोजन जो है ना वो कृष्ण और उनकी टीम हारने के लिए ही जाती है वहां पर। एक ऐसा गेम है हारने के लिए जाता है भगवान को ना, अपने गोपियों के सामने हारने के लिए बड़ा आनंद आता है, बहुत आनंद आता है उनको। जानबूझकर शरारतें ऐसे करती हैं कि उनकी डांट पड़े, हार जाए वो, उनको दंड हो जाए। तो यहां के संत ने हमें एक बार बताया था कि पूरा होली का, और पूरा होली का ही क्यों, जितनी भी लीलाएं होती हैं यहां पर उसका सार ही यह है कि भगवान अपने भक्तों के सामने हारने के लिए आते हैं। मतलब कितना प्रेम करते हैं उसके पीछे, हारने के पीछे क्या उद्देश्य क्या है कि मेरे भक्त हमेशा मुझसे अधिक गौरवान्वित हो, लेट देम बी ऑलवेज मोर ग्लोरिफाइड देन मी, सो आई टेक अ लोअर स्टेप, मैं उनके नीचे रहूंगा और उनको आगे रखूंगा। और ये ब्रह्मा जी को ध्यान में आया। देखो ब्रह्मा जी की चेतना जो है ना, कल हम इस प्रवचन के बाद चर्चा कर रहे थे कि ब्रह्मा जी पहले कौन से मूड में आए थे, चलो मैं टेस्ट करता हूँ कौन है ये लड़का, तो टेस्ट करने के भाव में है, मतलब मैं बड़ा और मैं किसी की परीक्षा लेने जा रहा हूँ, मैं ब्रह्मा जी इस ब्रह्मांड का प्रथम नागरिक यानी कि फर्स्ट सिटीजन सीईओ ऑफ द यूनिवर्स, और मैं जा रहा हूँ, कोई बालक है कहते हैं उसने वो अगासुर को मारा, देखता हूँ कौन है वो, लोग कहते हैं वो भगवान है, लेट मी गो एंड टेस्ट, ऐसे मूड में गए। फिर एक शरारत की उन्होंने चुराने की, मतलब एक गुनाह किया, सोचा कि मैं कुछ बड़ा काम कर रहा हूँ, मेरी शक्ति का प्रभाव से ये बालक को जरा देखता हूँ क्या है इस बालक के अंदर। फिर पता चलता है एक के बाद एक के बाद एक, पूरा जो दिमाग पर विश्वास था ना उनका वो सब खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। जितनी अपनी बुद्धि पर विश्वास है, शक्ति पर विश्वास है, अधिकार पर विश्वास है, पद पर विश्वास है, प्रभाव पर विश्वास है, वो एक एक करके सब चकनाचूर हो जाता है। उसके बाद पता चलता है कि अरे तो भगवान है, 7 साल का बालक नहीं है ये ग्वाल बाल, ये तो भगवान है, मेरे आराध्य देवते ये, इनके द्वारा तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, इनके द्वारा हृदय में प्रेरणा हुई थी, यही है वो। नतमस्तक हो गए, जमीन पर लोटपोट हो गए, स्तुतियां करने लगे, पश्चाताप करने लगे, रोने लगे। यहीं उनका चेतना का यातना यात्रा जो है समाप्त नहीं हुई है, बहुत पश्चाताप किया, बहुत स्तुतियां की भगवान की। फिर ग्वाल बालों ने उनका दाढ़ी खींची वगैरह जो भी करना है किया, फिर वो चले गए। तो जो तीन श्लोक मैंने कल आपको बताए थे उसमें दूसरा श्लोक जो था उसका क्या था कि मैं इन ग्वाल बालों की ब्रजवासियों के चरणों की रज प्राप्त करना चाहता हूं। ऐसे उन्होंने कहीं बताया नहीं कि मैं कृष्ण के चरणों की रज प्राप्त करना चाहता हूं। तो उनको ये महात्म्य समझ में आया था कि भगवान जो है ना वो तो महान है ही, लेकिन भगवान भी जिनको महान मानते हैं वो ये ब्रजवासी हैं जिनको सराख ऊपर रखते हैं। तो मैं चाहता हूं कि इनके चरणों की रज मिल जाए, इसलिए मुझे वृंदावन में जन्म मिल जाए। और वृंदावन में नहीं मिलेगा, मेरी योग्यता नहीं होगी, समझो मैं पापी हूं, अधिक अपराधी हूं, जो भी कुछ है जिसके वजह से नहीं मिलता होगा, तो मैं वृंदावन के बाहर भी जन्म लेना चाहता हूं, ताकि कभी बाहर घूमते घूमते आ जाए तो उनका चरणों की रज मेरे सर पर पड़ जाए। और उसके बाद में वो वहां पर हंस पर बैठकर उड़े हैं। और आप ब्रज में जाएंगे ना तो वृंदावन में ब्रह्म कुंड है, यहाँ पर यहाँ तो बरसाना है, वृंदावन में एक ब्रह्म कुंड है। ऐसे 15 मंजिल की अगर बिल्डिंग होगी जिसमें 500 फ्लैट होंगे तो वो कितनी जगह घेरेगी, उतना गहरा है वो, ऐसा विशाल है। ब्रह्मा जी वहां से निकले कृष्ण की स्तुति करके बैठकर हंस पे, कुछ ही समय, मतलब ये जगह ये लीला हुई थी उधर गिड़ो जगह पर, चार पांच जगह है जहां पर ब्रह्मा जी की लीला हुई है, चौमुआ है, सही है, ऐसे बहुत जगह है। सही वो जगह है जहां पर वो सोच रहे थे कि ये बालक सही है कि वो बालक सही है, समझ में आपको आया? जो मैं यहां देख रहा हूँ खेल रहे हैं वो सही है कि जो मेरे लोक में छुपे वो सही है, इसलिए उस जगह का नाम पड़ा सही। एक जगह चौमुआ है जहां पर वो बिविल्डर हो गए थे देख के, क्या देखे, जब सारे गाल बाल विष्णु बने तो वो एकदम चकित हो गए थे, वो चौमुआ जगह है। एक जगह परखम है जहां पर उन्होंने भगवान का परीक्षा लिया था छीन कर, वहां से छीना था उनको, उसका नाम है परखम। ऐसे चार जगह है। और बाद में जब ग्वाल बालों ने दाढ़ी वाड़ी खींच के बिठाया वो गिड़ो जगह है। तो उसके बाद निकले वो हंस पर बैठे, थोड़ी ही देर में उतर गए और इतना रोए कि मैं कितना पागल व्यक्ति हूं। और दुख उसको हो रहा था कि अरे बाय द वे मैं तो इस विश्व का सबसे बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति हूँ, और मुझ जैसा सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ है, भगवान कितना विश्वास करते हैं मुझ पर इसलिए ये पोस्ट दिया है, और मैंने ये गलती किया है, ये सबसे और दुख हो रहा था उनको। इतना रोए पूरा कुंड है ना वो भर गया पूरा अश्रुओं से, वो ब्रह्म कुंड है। फिर वही बात डॉक्टर आई सर्जन की है ना, वो अश्रु ग्रंथि में कितनी कैपेसिटी है और जमा कितना हो रहा है लेकिन वो प्रामाणिक भाव था, पश्चाताप का। कहते हैं अपराध करना स्वाभाविक है, हम लोग कर सकते हैं अपराध, लेकिन अपराध के बाद में हृदय से पश्चाताप करना जो है ना वो बहुत जरूरी है। कमिटिंग ऑफेंस इज नेचुरल समटाइम्स यू नो इन मटेरियल वर्ल्ड इट हैपेंस, बट आफ्टर कमिटिंग मिस्टेक एंड ऑफेंस ट्रू रिपेंटेंस ट्रूली फ्रॉम द हार्ट इज वॉट इज इंपॉर्टेंट, जो भगवान को अट्रैक्ट करता है। भगवान जानते हैं सब लोग तो क्या यहाँ पर आए तो अपराध करने के लिए तो आए हैं, क्या है उसमें बड़ी बात है, लेकिन अपराध करने के बाद कोई हृदय से पश्चाताप करता है तो भगवान उससे बड़े प्रभावित होते हैं, भगवान पूरी कृपा देते हैं उसको। तो ब्रह्मा जी यहाँ पर हृदय से पश्चाताप कर रहे हैं, अभी सब कुछ माफी हो गई, ब्रह्मा जी को भगवान ने थोड़ा डांट भी दिया, सब कुछ होके स्तुति किया, भगवान प्रसन्न हो गए, भगवान खेलने चले गए या अपने रास्ते से निकल गए, लेकिन उनको ना हृदय इतना दुखी था कि वो बैठ के रोए, वो तालाब भर के पूरा रोए, वहां से फिर वापस हवाई जहाज में अपने राजहंस पे बैठकर उड़े। और ब्रह्मालोक की ओर भी जा ही रहे थे, लेकिन पृथ्वी से ही जा रहे थे, अभी तक बहुत ऊंची गए नहीं, वापस उतर गए वो। उनका दिल ना पूरा पश्चाताप से मतलब तृप्त नहीं हुआ था, मतलब अभी भी उनको रोना आ रहा था, कैसे किया मैंने ये, क्यों किया मैंने ये, इतना भगवान ने विश्वास रखा, इतना पद दिया, इतना अधिकार दिया, इतना स्थान दिया, इतना सेवा दिया मुझे, इतना बड़ा काम दिया, वो मुझसे ही कैसे हो सकता है। तो इसके सबकी जड़ एक ही है। देखो और एक प्रोग्रेस हो रहा है उनकी चेतना में, क्या प्रोग्रेस हो रहा है चेतना में कि सबकी जड़ क्या है, ये मेरा पद जो है ना वो सबकी जड़ है, क्योंकि मैं इतने बड़े पोस्ट पर बैठा हूं, मेरे ऊपर इस ब्रह्मांड में कोई है ही नहीं टॉप अथॉरिटी, डायरेक्ट कृष्ण भगवान मेरे रिपोर्टिंग अथॉरिटी है, बीच में कोई है ही नहीं, और सारे लोग नीचे हैं, जिसको भी उठाओगे तो आप ग्रेट ग्रैंडसन कह सकते हैं उसको, ग्रेट ग्रैंड डॉटर और ग्रैंड, किसी भी जीव को उठाओ, ये कौन है, ये तो मेरा ही निर्माण है। इतना बड़ा पोस्ट होने की वजह से मुझे वो गर्व हुआ था, और उस गर्व के वजह से ही मेरे बुद्धि पर वो माया का आवरण छा गया था। इसके आवरण की वजह से मैं सत्य को देख नहीं पा रहा था। और सत्य यह है कि भगवान कृष्ण ये लीला करने के लिए उतरे हैं, इस सत्य को मैं पहचान नहीं पाया, और इसलिए मैंने ये हरकत की, हिम्मत की ऐसे करने की कि जिसके जो भगवान है उनके बालकों को छीनकर उनकी परीक्षा लेने की हिम्मत मैंने की। इसकी सारी जड़ क्या है, मेरा पद, माय पोजीशन, माय पावर। तो आकाश में उड़ रहे लेकिन विचार कर रहे इस समस्या का ना जड़ से समाधान करना चाहिए। आई शुड सॉल्व इट फ्रॉम द रूट, आई डोंट वॉन्ट टू गेट इन इन्वॉल्व इन टू ऑल दिस थिंग अगेन। कभी मुझे वापस इसमें पढ़ना ही नहीं है। वापस उतर गए वो, पश्चिम बंगाल में उतर गए। वो वहां बैठकर उन्होंने तपस्या किया, इतना तपस्या किया जोरदार। क्या भाव से किया? एक ही भाव से किया कि मुझे ना अभी अगली बार ब्रह्मा तो बनना ही नहीं है। नंबर वन, एक इच्छा का एक भाग किया है, डेफिनेटली आई डोंट वॉन्ट टू बिकम ब्रह्मा अगेन, एक भाग प्रतिज्ञा मतलब तपस्या का। दूसरा भाग यह है कि ये तो एश्योर हो गया, दूसरा भाग यह है कि मुझे अभी किसी भी अच्छे कुल में जन्म लेना नहीं है, और जन्म लेना है तो मुझे एकदम तुच्छतम कुल में जन्म लेना है, जिसको कोई पूछेगा ही नहीं, कोई वैल्यू ही नहीं होगी उसकी, कोई सम्मान ही नहीं होगा, तुच्छतम लोएस्ट ऑफ स्पीशीज या मैनकाइंड, उसमें मुझे जन्म होना चाहिए। ये दो भाव लेकर उन्होंने तपस्या किया। देखो इस दुनिया में ना सब लोग तपस्या करते हैं किसी न किसी प्रकार की, लेकिन हर तपस्या का उद्देश्य क्या होता है, मैं आज जिस स्थिति में हूं उससे ऊपर चला जाऊं। यहां पर कोई तपस्या ऐसा नहीं करता है कि आज मैं अगर 12th पास हूं तो मैं 10th पास हो जाऊंगा। ऐसा आप लोग करते हैं, हर बार एग्जाम देते तो आपका क्या है, अगले स्टैंडर्ड में चले जाए ना, भाई स्कूल से निकल जाएंगे तो 11th में जाना है, उसके बाद में 12th में जाना है, उसके बाद में MBBS या इंजीनियरिंग या MBA या लॉ में जाना है, उसके आगे भी कुछ करते रहेंगे तो उसको आगे जाना है आपको। दो ही ऐसे व्यक्ति है पूरे इतिहास में जिन्होंने डिमोशन के लिए तपस्या किया था, एक है ब्रह्मा जी और एक है उद्धव जी। उद्धव जी का पोजीशन तो ब्रह्मा से भी श्रेष्ठ था, क्योंकि वो श्री कृष्ण के पास में रहते थे, एकदम ऐसे उठते बैठते खाते पीते मजाक करते राजनीति करते शिकार खेलने के लिए जैसे भी हो हर समय इतने चिपके रहते भगवान से। ब्रह्मा तो अपने ऑफिस में बैठकर अपना काम करते थे ब्रह्मांड में, लेकिन उद्धव जी तो कृष्ण के निकट रहकर सारी लीला करते थे। फिर भी वो ब्रज में आके तपस्या किया, उनका भी यही भाव है, उन्होंने देखा कि ये ब्रजवासी गोपियां गोपाल नंद महाराज यशोदा मई सब कुछ है, ये इतने महान है इतने महान है, वो सोचते हैं कि मैं महान हूं क्योंकि वो उनसे दूर है और मैं उनसे इतना पास में हूं, वो सोच रहे हैं कि मैं कितना महान हूं, कृष्ण जैसा दिखता भी हूं मैं, उनका रंग भी कृष्ण जैसा था, उनका स्वरूप भी कृष्ण के जैसा ही था, कृष्ण के भाई थे, कृष्ण के सेनापति थे, कृष्ण के सलाहकार थे, कृष्ण के मित्र थे, कृष्ण के हर चीज करने में साथी थे भगवान के, तो और कोई उनके लिए भी ऐसा पदोन्नति कुछ था नहीं कि इससे आगे मैं अभी एडवांसमेंट क्या होगी मेरे, मतलब वो अपने तरीके से एक हाईएस्ट डिग्री में पहुंच गए थे सभी दृष्टि से, लेकिन भगवान को उनको दिखाना था प्रिय उद्धव ये अंत नहीं है, दिस इज नॉट एंड ऑफ नॉलेज और एंड ऑफ अचीवमेंट, इसके आगे भी कुछ है, इसलिए उन्होंने उनको वो खत का बहाना करके ब्रज में भेजा। अभी बृहस्पति की पाठशाला में सर्वोच्च पदों क्या हुई थी, शिक्षा प्राप्त करके वो आने वाले स्नातक थे, वो द ग्रेजुएट फ्रॉम बृहस्पति यूनिवर्सिटी, द हाईएस्ट टॉप मोस्ट स्टूडेंट थे वो। तो कहते भगवान ने उनको ब्रज की पाठशाला में भेज दिया आगे का PhD करने के लिए, उनको लगा था कि सेवा करने के सिखाने के लिए जा रहा हूं अध्यापक बन के, लेकिन बनाया विद्यार्थी उनको भगवान ने। और वो देखकर उनको क्या अनुभूति हुई कि ये जो एक एक व्यक्ति यहां पर है, पंछी भी है यहाँ के, जानवर भी है, गाय बछड़े हैं, नंद माता यशोदा देवी है, ग्वाल बाल हैं, गोपियां हैं, जितनी भी जीव हैं, वो हर एक जीव यहाँ का मुझसे महान है, भगवान इतना प्रेम करते हैं उनके ऊपर, और मुझे लग रहा है कि मैं इतना भगवान के पास में हूं, लेकिन आज मुझे ये अनुभूति हो रही है, ऐसे उद्धव जी का चिंतन चल रहा है कि इसमें से हर एक व्यक्ति भाव रूप से भगवान के इतने निकट है जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। और इतना निकट और भौतिक दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ होने पर भी अपने आप को तृण से भी तुच्छ वो मानने लगा। कोई फिलॉसफी डायलॉग बोलने की बात नहीं है ये, उनको लग रहा था कि मैं इतना तुच्छ हूँ कि इनकी चरणों की धूल मेरे सर पर जब तक नहीं आती है तब तक ये जो रहस्य उनको प्रचुर मात्रा में पता है प्रेम का, उसका कर्ण भी मुझे अवगत नहीं होगा जब तक इन लोगों के चरणों की धूल मेरे ऊपर ना जाए। समझो, प्रधानमंत्री को लगेगा कि वो बरसाने के एक गांव है, उस गांव का एक जो व्यक्ति है उसके चरणों की रज मिलनी चाहिए, और वो आएगा तो जो व्यक्ति जो है गांव का, वो कितना संकोच होगा उसको, अरे प्रधानमंत्री को चरणों की रज कैसे दूं मैं, वो तो प्रधानमंत्री है। वैसे उद्धव को भाव हुआ कि इच्छा तो मेरी है कि इनके चरणों की रज मिलनी चाहिए, लेकिन अगर मैं जाके मांगूंगा इन गोपियों को, ग्वाल बालों को, तो वो तो भाग जाएंगे, बोले आप तो वंदनीय हो, आप कृष्ण के निकट सखा हो, हमारे लिए वंदनीय पूजनीय हो, हमको आपके चरणों की रज देना चाहिए, तो सब लोग भाग जाएंगे, तो कितना संकोच होगा उनको अगर मैं ऐसी इच्छा भी करूंगा तो। तो उनके मन में और एक नम्रता का और एक प्रकटीकरण हुआ। कैसे हुआ? कि मैं ना अभी ऐसा रूप धारण करूंगा कि जिसके ऊपर चलने के लिए इनको कोई संकोच ही नहीं होगा। तो उन्होंने देखा, जब वो 6 महीने यात्रा कर रहे थे उनके साथ में सब जगह पर, देखा कि घास के पत्तों पर चलने में इनको कोई संकोच नहीं, नम्र है बहुत ही, लेकिन फिर भी घास के पत्तों पर बहुत अच्छी तरह चलते हैं। तो उन्होंने मन में निश्चय कर लिया कि मैं जाके तपस्या करूंगा और घास का पत्ता बनूंगा, जिस पर सहजता से बिना संकोच, बिना एप्लीकेशन, बिना रिक्वेस्ट किए हुए वो चलेंगे, और सहजता ही उनके चरणों की रज जो मुझे चाहिए वो उनके ऊपर गिरती रहेगी, तो वो मेरे मुझे प्राप्त होगी, मैं घास बनूंगा। तो उन्होंने भगवान का सान्निध्य, भगवान का निकट रहने का भाग्य, भगवान के राज्य में अधिकार, भगवान के सलाहकार की पोस्ट, भगवान के मित्र की पोस्ट, भगवान को उठना बैठना खाना पीना इतना जो प्रिविलेज कहते ना उसको भाग्य, सब कुछ छोड़ दिया उन्होंने। और गोपियाँ उनको कह रहे थे आप कितने भाग्यवान हो, उनके साथ बैठते हो, उठते हो, खेलते हो, हम लोग तड़प रहे हैं उनके लिए। ये गोपियों को जो उनका भाग्य लग रहा था वो सब उन्होंने छोड़ दिया स्वेच्छा से, फोर्सफुली उनको पदच्युत नहीं किया गया, और वो छोड़कर ब्रज में आए और तपस्या किया तृण का पत्ता बनने के लिए। और तभी कृष्ण यहां पर आने वाले नहीं थे कि भी कृष्ण की रज भी मिलती, नहीं नहीं नहीं, केवल ब्रजवासियों की रज प्राप्त करने के लिए उन्होंने तृण का पत्ता बनने के लिए तपस्या किया उद्धव कुंड के पास गिरिराज गोवर्धन में, और गुलमलता नाम के तृण के पत्ता बने, वो विशेष पत्ता बने, और कहते आज भी वो निवास कर रहे हैं उस गुलमलता के रूप में। उसका प्रमाण यह है कि भगवान तो वापस लौट के नहीं आए जब वो तृणपत्ता बने, लेकिन भगवान की रानियां वहां पर आई थी विलाप करते हुए, भगवान का भगवान चले गए, अंतर्धान हो गए, द्वारका लीला समाप्त करके भगवान अंतर्धान हो गए, तो गोपियां बड़ी विरह में, अरे पत्नियां भगवान की बड़े विरह में आ गई। तो भगवान ने पहले प्लान बना के रखा था, परीक्षित जी को, बज्रनाभ को बता के रखा था, ये बहुत दुखी हो जाएंगे तो उनको ब्रज में लेके जाना। तो वो आई, यमुना जी को मिली, या फिर वो यमुना जी के निर्देश के अनुसार उद्धव कुंड कुसुम सरोवर के पास में गई, और उन्होंने जब संकीर्तन किया भगवान के नाम का तो गुलमलता के रूप में से ये मनुष्य रूप में प्रकट हो गए, मतलब वहीं पर थे वो। उन्होंने गोपियों रानियों को भगवान के 30 दिन भागवत सुनाया, उनका उद्धार हो गया, वो चले गए भगवत धाम, वापस ये तृण का पत्ता बन गए, और अभी भी वहां निवास विराजमान है, विशेष प्रकार का तृण पत्ता। तो एक ब्रह्मा जी हैं और एक उद्धव जी, उन्होंने ही अपने तथाकथित उच्च पद को त्याग करके तथाकथित भौतिक दुनिया में न्यूनतम पद प्राप्त करने के लिए इतनी अघोर तपस्या की। ये ब्रज है, प्लीज अंडरस्टैंड, यही ब्रज का सार है। यहां पर हर व्यक्ति अपने आप को पीछे रखने का कोशिश करते हैं, अगर सच्चा ब्रजवासी है तो सबको देने का प्रयास करते हैं, कुछ लेते नहीं है, सब लोगों को हमेशा देते रहे। सच्चा ब्रजवासी जो है ना वो कभी किसी से अपेक्षा नहीं करता है, वो आने वाले व्यक्ति को सब कुछ देना चाहता है, गरीब से गरीब व्यक्ति भी हो। आप जाइए, कभी समय मिलेगा आपको, कभी ज्यादा समय मिलेगा, आप किसी भी घर में जाके बोले मैया रोटी खिलाओ, तुरंत आपको रोटी दे, वो देखेंगे अरे कौन सा बाबू आया शरीर से, शहर से, लगता है चश्मा पहन के पढ़ा लिखा दिखता है, लेकिन वो आप वो आपको सवाल नहीं करेंगे, अरे आप कैसे मांग रहे हैं, आप तो बड़े धनी लगते हो, पढ़े लिखे लगते हो, आपके पास पैसा नहीं है क्या? नहीं, उनके दरवाजे पर कोई भी आएगा और मांगेगा तो तुरंत दे देंगे उनको, तुरंत। मैं तो यही अनुभव एक बार अनुभव किया कि हम लोग ऐसे जा रहे थे उधर पहाड़ पर श्री जी महारानी के, तो एक पहचान की ब्रजवासी माता जो है अपने बच्चे को स्कूल बैग पकड़कर भाग भाग के स्कूल ले जा रही थी, ब्रजवासी माता, हमको हमारी पहचान की थी। तो हम लोग मिले तो कहा, अरे तुम आई नहीं रोटी खाने के लिए हमारे घर पे, आएंगे, टाइम नहीं मिला हमको, कैंप में बिजी रहते। नहीं नहीं कभी कभी आ रही हो, बोले पता नहीं अभी कभी आ रहे, तो ये काम करो अभी जब आओगे तभी आओगी, लेकिन ये डिब्बा ले लो, इसमें रोटी बनी है गरम गरम। तो हमने कहा, अरे तो पर बच्चे के लिए, तो स्कूल में लेके जा रहे, उसका टिफिन है ये। नहीं नहीं वो दोबारा बना के भेज दूंगे मैं, आप कब मुझे मिलेंगे वापस? तो बच्चे को स्कूल के लिए टिफिन रोटी बना के दी है और वो हमारे हाथ में जबरदस्ती पकड़ा दी उन्होंने। कौन सी ऐसी माँ है जो अपना बच्चे का टिफिन किसी को दे सकती है? देखो आप, एक ब्रजवासी कर सकता है, और दे दिया हमारा टिफिन, हमारे हाथ में टिफिन, उन्होंने दंग रह गए उनके दानी प्रवृत्ति को। हम लोग सब लोग पहले छोटी उम्र में ब्रज में घूमते थे ना, तो यात्रा करते करते झोपड़ियों में जा जाकर भिक्षा करते थे, हम लोग माधोपुरी करते थे, कभी किसी घर में हमको कमी नहीं हुई। आपको क्या चाहिए, छाछ चाहिए, अचार चाहिए, सब्जी चाहिए, रोटी चाहिए, इतनी इतनी लेके आते थे एक एक आदमी, और हम लोग फिर पेड़ के नीचे बैठकर उसको माधोपुरी खाते थे, क्योंकि ब्रजवासियों का प्रेम है उसके अंदर, उनका भाव है उसके अंदर। यहां पर गरीब से गरीब आदमी भी दानी होता है, और शरीर में शहर में अमीर से आदमी, अमीर आदमी भी कंजूस होता है, दे नहीं सकता है, क्योंकि दान शूरता जो है ना वो धन में और विद्या में और शिक्षा में और इसमें नहीं होती, दान शूरता हृदय में होती है। हृदय से आदमी दान शूर होना चाहिए। मान अगर संकुचित होगा तो करोड़पति भी होगा, वो अब्जोपति भी होगा, तो दे नहीं पाएगा किसी को, लेकिन जो ब्रजवासी व्यक्ति है वो गरीब से गरीब होगा भी उसका हृदय पूरा खुला है, कभी भी आके रहो। जैसे हमने यहाँ पर कैंप किया था पहले, वो कह रहे थे हमारे यहाँ पर कैंप करो आप, जैसे कैंप शुरू हुआ 92 में, 91 में हम लोग यात्रा करते घूमते घूमते आए थे, तो उन्होंने कहा हमारे यहाँ भी करो। हमने कहा रहेंगे किधर? तो कह रहे हमारे घर में रहो। मैंने कहा मैया 70-80 लोग आएंगे तो क्या हुआ, हमारे घर में रहो। वो लगा ऐसे ही हमारे शहर में कैसे होता ना, आ जाओ ना प्रभु, आ जाओ ना, हाँ एक बार आ जाओ घर में हमारे। लेकिन उसमें कुछ ठोस बात नहीं होती है, कभी आऊँ, किस समय आऊँ, किस दिन आऊँ, ऐसा नहीं। या ना आमच्याकडे एकदा येऊन जा, एकदा मुंबईला आला की आमच्याकडे या, है ना। लेकिन उसमें कुछ सब्सटेंस नहीं होता है, इसको बुलाना होता है ना, वो बोलेगा कभी आ रहे हो, किस समय आ रहे हो, बोलो मंगलवार को आ रहे हो, सोमवार को आ रहे हो, शाम को आ रहे हो, सुबह आ रहे हो, लंच में आ रहे हो कि डिनर में आ रहे हो, बताओ अभी बताओ। तो आपको लगता है कि भाई इसको मुझे जरूर बुलाना है। तो हमको लगा हमारा तो बम्बई का आदत है, बम्बई का दिमाग है, बम्बई का अनुभव है, मुझे लगा ऐसे ही बोलते होंगे। लेकिन आपको क्या बताऊं, उनके छोटे से घर में, मतलब वो मुंबई से बहुत बड़ा होता है लेकिन फिर भी छोटा सा ही था, 68 लोग रहे हम लोग। अभी जनवरी की तो आपकी है तो ठंड ठंड बोल रहे हैं आप लोग, कहाँ पर है बर्फ, बहुत सारे कपड़े पहन के बैठे हैं, लेकिन वो ठंड को आपको यकीन नहीं कर सकते, इतनी ठंड थी वहाँ पर। उस ठंड में हमने ना, उन्होंने टाट के कमरे बनाए थे, टाट के, यू नो गनी साहब गोंडपाट हो ना, गोंडपाट, उसके कमरे बनाए थे, उसके अंदर ही बाथरूम, उसके अंदर ही रहने का इंतजाम, उसके अंदर ही टॉयलेट, मतलब अलग अलग जगह पर। और एक दो दिन नहीं, 15-16 पूरे दिन 68 पीपल उनके घर पे रहे हम लोग। सब लोगों को उन्होंने कंबल दिया, सब लोगों को रात को गरम गरम दूध पिलाया, सब लोगों को सुबह सुबह गरम पानी करके दिया। मालूम है ना आपको, आप सुबह गरम पानी करके रखेंगे ना तो 3 बजे रखेंगे तो 6 बजे तक गर्म ही नहीं होगा, इतना आइस कोल्ड पानी होता है। तो इतना सेवा भाव है उनका, इतना सेवा भाव है कि रात को 12 बजे सबको दूध पिलाकर कंबल देकर सुलाने के बाद, विश्वास होने के बाद सब सो गए आराम से। तो फिर वो घर के जो यजमान थे, वो बड़े इतने बड़े भगोने में, शायद 1000 लीटर का पात्र होगा वो, उसके अंदर चूल्हा जलाकर उसको आधा गर्म करते थे 1 घंटा के लिए, और बंद करके रखते थे, फिर 3 बजे उठ के वापस चला जाते थे, तुरंत गर्म मिले लोगों को। और फिर वहाँ खड़े रहकर लोगों को बाल्टियाँ बांटते थे, और फिर ऐसे लोग बाल्टियाँ ले लेकर स्नान करके 5 बजे कैंप की जगह पर रिपोर्ट करते थे। बीच ठंड में सब धुंध गिरा है तो कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, गाड़ी की लाइट भी कुछ दिखाई नहीं पड़ती। ऐसे एक दिन कर सकता है आदमी, दो दिन कर सकता है, 15-16 दिन किया उन्होंने, सारे भोजन की व्यवस्था किया, और 1 रुपये की अपेक्षा नहीं है, कि इतना इतना खर्चा हुआ तो इतना इतना इनसे लेना है, ऐसा परिवार है वो, आज भी है, आज भी हमारा सपोर्ट है यहाँ पर। एक कैंप के अंदर, अभी देखो दानी प्रवृत्ति कैसे थी, एक कैंप के अंदर हमारे अंदर ना वो क्या हुआ, हमने सोचा कि इतनी ठंड है, लोगों को कैंप के बाद में जाने के समय कंबल देना है, क्या मतलब है उसका, इधर ठंड में कांप रहे हैं और हमारा गिफ्ट तो हमको बाद में देना है, तो सोचा कि इसको शुरुआत में दे देते हैं, आते ही पहना देते कंबल। हाँ, तो उन्होंने क्या किया वो कंबल और जो बिछाने वाला कंबल दोनों ही रोल करके दोनों लेके गए हो, तो एंड में क्या हुआ, हमारे पास 77 कंबल कम पड़े हमको एंड मौके पे। अभी आज डिस्चार्ज है, अभी 77 कंबल, अभी एंड मौके पे कहाँ से लाए, यहाँ पर कोई दुकान थोड़ी है, मथुरा में दुकान है या तो आगरा में कहीं, तो हम उनके घर पे गए, तुरंत उन्होंने अपना गोडाउन खोला, ले जाओ जितने चाहिए उतने ले जाओ, तो हमने 77 गिन के ले लिए। तो मुझे लगा मेरा कर्तव्य है कि उसको लौटाना चाहिए या तो उसकी कीमत चुकाना चाहिए, हमारे तो एक इमरजेंसी में हेल्प किया, दूसरे तो कंबल भी ले गए हम लोग, तो मैं हिसाब किताब करके गया प्रभु जी, थोड़ा इतना नाराज़ हो गए मुझ पर, वो इतना नाराज़ हो गए, डांटने लगे मुझे, अरे आपने अपने कैंप के बैनर पे लिखा है राधा रस मंदिर के तत्वावधान में और भक्ति विधान अस्पताल एवं राधा रस मंदिर के तत्वा, मतलब क्या ज्वाइंट क्या कहते हैं संयोजन में, निकाल दो हमारा नाम वहाँ से, अगर आपको लगता है कि ये ब्लैंकेट के पैसे मुझे देने चाहिए, आज से हमारा कैंप में नाम निकला नहीं, ऐसे नाराज़ हो गए वो। तो मैंने तुरंत जेब में, मैंने थोड़ी माफ़ी चाहता हूँ, मतलब जो बम्बई में व्यवहार कहते हैं बुद्धिवंत व्यवहार कहते हैं वो यहाँ पर अपराध है, ऐसे कई कहानियाँ यहाँ पर। वो सच्चा ब्रजवासी है, उसकी खोज में हमको रहना चाहिए और ऐसे लोगों का संग करना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों के संग करने से ही थोड़ी बहुत भक्ति जागृत हो जाती है, इसलिए हम लोग यहाँ पर आते हैं। कृष्ण भगवान राधा रानी तो बहुत दूर की बात है, अभी मंदिर में जाकर दर्शन करते हैं कि हमारे पास क्या अनुभूति है कि यही ठाकुर है, यही ठाकुरानी है, किसको अनुभूति होती है, लोग बता रहे हैं इसलिए हम जा रहे हैं, भाग रहे सुबह सुबह गर्दी में जाके, भाई लोगों ने कहा कि बहुत पावरफुल जगह जाना चाहिए, हम जाते हैं लेकिन हमको क्या अनुभूति मिलती है वहाँ पर, केवल फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग है कि हाँ वो पानी जो है ना वो इधर गिरना चाहिए, आरती होते हुए दिखना चाहिए, आरती का वो भी मिलना चाहिए, बस बहुत इंपॉर्टेंट है ये, लेकिन अनुभूति के अकाउंट में क्या है, शून्य। तो हमारे लिए अगर अनुभूति प्राप्त करनी है तो यही ब्रजवासी लोग हैं जो उस अनुभूति को खुद संपृक्त हो चुके हैं, सैचुरेटेड हो चुके हैं, उनकी सेवा करने से, उनकी कृपा से, उनकी संतुष्टि के माध्यम से, उनके स्मित हास्य के माध्यम से हमको वो थोड़ा बहुत अनुभूति आने लगेगी, कुछ बीज अंकुर आएगा उसके अंदर, इसलिए ये सब कैंप का प्रयोजन है। बाकी तो गवर्नमेंट के लिए नंबर भी देते हैं हम लोग, कितना ऑपरेशन किया, कितना कंबल बांटे, सब उसका रिकॉर्ड होता है, वो एक स्तर पे है, उनका ग्रांट ले लेना हमसे, उनका जो गवर्नमेंट का पैसा है वो लेना, वो एक स्तर पे होता है, लेकिन हमारा कैंप उस स्तर पे नहीं चलता है, वो स्थल एक व्यावहारिक स्तर है जो हम लोग अपना अपना नियम से करते रहते हैं, रिकॉर्ड रखते हैं, सब कुछ करते हैं, डेटा सप्लाई करते हैं उनको, उनसे फंड भी लेते हैं, लेकिन रियल हमारा जो पर्पज़ है ना वो हम जैसे गरीबों को भिक्षुक बन के आकर हमारी झोली भरने के लिए हम लोग यहाँ पर आते हैं, इसी भाव से हमको आना चाहिए, किसी गरीब बेचारे व्यक्ति पर उपकार करने के लिए नहीं आना चाहिए यहाँ पर, कोई यहाँ पर गरीब बेचारा नहीं है, है गरीब बेचारा कोई तो हम लोग ही है, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने वाले, चमकदार चश्मा पहनने वाले, ये हम लोग सबसे बड़ी गरीब है यहाँ पर, क्योंकि जो पूंजी उनके पास है, जो भगवान को प्रभावित करती है, जो भगवान को गुलाम बना देती है, भगवान को वश में कर देती है, वो पूंजी उनके पास में है, और उन भगवान का हमको दूर से एक कण का भी दर्शन नहीं होता है, वो भगवान उनके ताले बजाने पर नाचते हैं, बार बार भिक्षा मांगते हैं माखन की और छाछ की। तो इन ब्रजवासियों की महिमा कितनी की जाए उतनी कम है, इतने द्वारका में रहे, इतने पांडवों के बीच में रहे, इतना युद्ध में रहे, इतना द्वारका में इस राजपाट किया, क्या क्या किया उन्होंने, बहुत चमत्कारी कार्य किया, लेकिन हृदय से हमेशा उनकी भावना में वश रहे, वो रात रात को उठकर वैसे ही सो रहे बिस्तर पे, रात बीच रात में खड़े होकर बिस्तर पे खड़े होकर रोते थे, तो रुक्मिणी सत्यभामा महाराज ने क्या हो गया भगवान, क्या हो गया आपको, कुछ परेशानी है, कुछ दवाई दे, हकीम को बुलाओ, वैद्य को बुलाओ, तो बोले कोई कुछ का किसका काम नहीं इसमें अंदर, वैद्य हकीम का, फिर वैसे मैंने कल बताया भोजन करते समय बताया था, कल मैंने भोजन करने को बैठे और लोग रो रहे हैं, रुक्मिणी हवा दे रही है, रुक्मिणी अपने हाथ से भोजन बनाया, नहीं सुबह बताया मैं शायद, आई डोंट नो, एनीवे बताने में दोबारा कोई प्रॉब्लम नहीं है। भाग्यलक्ष्मियों की भाग्यलक्ष्मी रुक्मिणी देवी जो है वो अपने हाथ से भोजन बना रही है, छप्पन भोग, कितना स्वादिष्ट होगा, कितना उच्च प्रति का होगा। सेकेंड, अपने हाथ से परोस रही है, क्या चाहिए आपको, गर्मा गर्म दे रही है, और बीच में जब खा रहे हैं वो तो हवा दे रही है उनको खुद अपने हाथ से, इतनी क्या कहते हैं समर्पित सेवा कर रही है उनकी वो, और इतना सब परफेक्ट काम चल रहा है तब भी भगवान रो रहे हैं। तो भी प्रश्न उठेगा ना, क्या अभी महाराज बताइए क्या कमी है, कुछ कमी है तो बता दीजिए, कुछ गुनाह हो गया, कुछ गलत हो गया, कुछ नमक कम हो गया, कुछ सेवा में बाधा हो गई, कुछ ठीक से नहीं हुआ, कुछ पात्र ठीक नहीं था, क्या बताइए कुछ। तो बोलते कुछ नहीं, आपका काम परफेक्ट है, उसमें कोई कोई डाउट नहीं है मुझे, लेकिन क्या करूँ, मैया के हाथ के प्रसाद की याद आती है मुझे। तो वो कैसा था, तो वो जो जब बालक बालक था ना, बालक में बच्चा था ना, तभी मेरे मुंह में दांत नहीं थे, तो अच्छे अच्छे पदार्थ बनते थे नरम वाले, लेकिन कड़क वाले भी बनते थे, जैसे लड्डू है वगैरह वगैरह, तो मैया की इच्छा होती थी कि ये भी खिलाना चाहिए बालक को, लेकिन वो दांत ही नहीं है। तो मैया कहती है, कहते भगवान बता रहे, रुक्मिणी को बता रहे, मैया वो लड्डू जैसा सख्त पदार्थ जो है वो लेकर अपने मुँह में डालकर उसको चबाकर पेस्ट जैसा बनाकर निकालकर भगवान के मुँह में देती थी। तो भगवान कह रहे हैं कि उसका स्वाद तो इसको नहीं आ सकता ना, जो वो स्वाद था, वो तुम्हारे छप्पन भोग तो परफेक्ट है, लेकिन उसमें वो स्वाद और वो भाव तो नहीं आएगा, इसलिए मैं रो रहा हूं। फिर रात में रो रहे हैं, सब गोपियां परेशान है, सब रानियां परेशान है, 16,108 रानियां थी, सब रानियां परेशान है, क्या करें भी इनको। बार बार फिर ललिता, विशाखा, धनिष्ठा, इंदुलेखा, इनका नाम ले रहे हैं, हम लोग यहाँ है, उपस्थित है, बाजू में खड़े आपके, और वो किसी को पुकार रहे हैं। तो बार बार ईर्ष्या से नहीं पूछते, वो रानियों के अंदर कोई ईर्ष्या नहीं थी, ये वो कौन है, वो उनको क्या है, उनको देखना चाहिए कौन है वो औरतें, ऐसा नहीं, क्या ऐसा चीज़ है जो हमारे अंदर नहीं, हम हासिल करना चाहते उनको प्रसन्न करने के लिए, ऐसी कोई चीज़ है जो हमारे अंदर नहीं है, जो उनको भाती है और हमारे अंदर नहीं, इसलिए वो तड़प रहे हैं, उनकी याद कर रहे हैं, तो हमको वो हासिल करके उनको संतुष्ट करना चाहिए, इस भाव से वो पूछते थे कि क्या है वो इतनी गोपियों के अंदर क्या है। तो भगवान ने कहा ठीक है, एक दिन आपको मैं बताऊंगा कि मैं क्यों रोता हूँ, माँ की याद में क्यों रोता हूँ, गोपियों की याद में क्यों रोता हूँ, ग्वाल बालों की याद में क्यों रोता हूँ। तो एक बार द्वारका में क्या हुआ, उनको सरदर्द हुआ, और सरदर्द हुआ तो आप जानते हैं द्वारकाधीश को सरदर्द हुआ, तो सब लोग परेशान, सब वैद्य हकीम आए, राज वैद्य पहले आया, वो हार गया, दवाई दिया कुछ फर्क नहीं पड़ा, और सबको बुलाया, सब घरगुती उपाय किए, कुछ भी उल्टा सरदर्द बढ़ते जा रहा है, तो बाकी राज्यों से हकीम वैद्यों को बुलाया गया, उनका भी सब फेल हो गया, तो सब प्राणियां एकदम सबके कपाल प्रदेश पर पसीना आ रहा है, अभी क्या हमारे ठाकुर को, हमारे स्वामी को सरदर्द हो रहा है, हम कुछ नहीं कर पाते, कम भी नहीं कर पाते। तो फिर नारद मुनि आए, वो देख रहे सब रानियां परेशान, मंत्री परेशान, सब दरबार के परेशान, तो क्या बात है, बोले भगवान सर पे हाथ रख के बैठे हैं, सर दुख रहा है उनका। तो क्या क्या किया नारद मुनि, सब रिपोर्ट लिया, बोले सब कुछ हो गया अभी। तो नारद मुनि बड़े बुद्धिमान थे, वो कहे अरे अभी हम उनको ही पूछेंगे कि क्या किया जाए। तो भगवान ने कहा आपने इतना प्रयत्न किया लेकिन मुझे नहीं पूछा कि मेरा सरदर्द किससे मिटेगा, आप सारे अपने अपने प्रयास कर रहे लेकिन मुझे पूछा नहीं आपने, अभी पूछ रहे हो तो बताता हूँ कि कोई भी व्यक्ति जो मेरा भक्त अपने आप को कहलाता है, कोई भी व्यक्ति पूरे विश्व में, कोई भी व्यक्ति ऐसा है जो मेरे अपने को मेरा भक्त मानता है, उसके चरणों की रज अगर मिलेगी और मेरे सर पे लगाएंगे तो मेरा सरदर्द मिट जाएगा। अभी क्या करना चाहिए सब लोगों को, तुरंत देना चाहिए ना अपना रज निकाल के, सब भक्ति है द्वारका में। लेकिन जैसे ही ऐसे कहा गया सारी रानियां पीछे हट गई, एकदम झट से पीछे हट गई, लहरी भक्त तो आपके हैं लेकिन आप हमारे स्वामी हैं, आपको अगर अपने चरणों की रज देंगे तो हम नरक में जाएंगे, अनेक अनंत कालों तक हम नरक में यातना भोगेंगे, ऐसा बड़ा अपराध सौभाग्यवती नारी कभी नहीं कर सकती है। तो उन्होंने कहा ठीक है आपकी इच्छा है। तो भी फिर वो यहाँ वहाँ देखने लगे, भाई कोई दरबार का मंत्री संतरी, कोई जितने भी लोग अपने अपने हैं वो कोई आगे आ गया, सब लोग पीछे हट गए, एवरीबडी बैक्ड आउट। नारद मुनि बोले भगवान अभी क्या करना है, तो बोले एक काम करो अभी आप ब्रज में जाओ, वृंदावन धाम में जाओ और वहाँ पर दौंडी लगा दो कि ऐसा ऐसा हुआ है, भगवान को दर्द हो रहा है सर पे, कोई भक्त भगवान का है जो अपने चरणों की रज देगा तो वो सरदर्द ठीक हो जाएगा। तो नारद मुनि गए, दोंडी लगाया, तो ये करोड़ों गोपियां भाग के आई। और कैसे मालूम है? चरण कर दे रहे हैं, जमुना जी में जाकर पहले पैर को भिगा रहे ताकि बहुत सारी रज निकले। ऐसा नहीं कि अभी लगी हुई उतना निकाल लो, ऐसा नहीं। जमुना जी में पहला पैर भिगाया, फिर रेत में पैर डुबा डुबा कर जितना हो सके वापस एक बार भिगाया वापस। तो नारद मुनि कह रहे, अरे इतनी जरूरत नहीं है, थोड़ी सी जरूरत है। तो बोला आगे के लिए रख लेना, आगे भी दर होगा, दर तो वापस कभी आओगे अगर आप। ऐसा स्थिति होना चाहिए कि परमानेंट इलाज होना चाहिए उसको, बार बार सब दर्द होता है तो उसका दवाई रेडी होनी चाहिए। इतनी देर आप आएंगे जाएंगे, कितना समय जाएगा, उतना देर तक हमारे भगवान तड़पते रहेंगे। नहीं नहीं, ले लो ले लो, अभी बोलते एक भक्त का भी इलाज काफी है। अरे ये सबका ले लो, बोलते सबका ले लो, सबका ले लो। तो नारद मुनि के सर पे बड़ा ढेर जमा हो गया। तो वो नारद मुनि को आश्चर्य हुआ, कह रहे ये वो तो इतनी रानियां थी, इतनी दरबार के लोग थे, भक्त थे, पुरुष थे, स्त्रियां थी, सब लोग पीछे हट गए। ये गांव की लड़कियां गवा रहे क्या, उनको पता नहीं है? बोले आप जानती हो क्या इसका मतलब क्या होता है? आप ठाकुर को अपने चरणों के रथ दे रहे हो, सब नरक में जाएंगे आप। तो गोपियों ने एक उत्तर दिया, परास्त कर दिया पूरा सबको, सबको फेल कर दिया उन्होंने। उन्होंने कहा आप नरक जाने की बात कर रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं ये आप ध्यान में रखना और आगे जाकर इस नॉलेज का इंतजार उपयोग करना। आगे कठिन कठिनाई समस्या आ गई तो वो ये है कि अगर हमारे चरणों की रज देने से और सर पे लगाने से अगर भगवान का अंश मात्र में भी सरदर्द कम होता है, ऐसा नहीं कि नष्ट होता है, अंश मात्र में भी कुछ कम हो जाएगा ना, कुछ मात्रा में, कुछ परसेंट में, तो जन्म जन्मांतर तक नरक की यातना भोगने को हम तैयार हैं। तो तुम हैरान हो गए हो, गए उधर इतना बड़ा बोरा लेकर, धीरे धीरे आ रहे हैं द्वारका में। तो द्वारकाधीश भगवान कह रहे हैं, अरे नारद मुनि ये क्या लेके आ रहे हो? बोले सब रज का ढेर है ये, ये कौन सी रज है? बोलते गोपियों ने जमुना जी में डुबा डुबा कर पार खुरच खुरच कर निकाल के दिया है। तो उनको आपने बताया नहीं क्या? भगवान देखो लीला कर रहे हैं ना, भगवान को अपने रानियों को वो प्रॉमिस का उत्तर देना है ना। उन्होंने रात में पूछा था ना, कि सबने पूछा था, सब रानियों ने, कि क्या है उतना गोपियों के अंदर जितना आप उनको याद करते हो रात रात को उठकर नींद खराब करके। तो उन्होंने कहा था बताऊंगा एक दिन। तो अभी वो क्या कर रहे हैं, जानबूझ को नारद मुनि को सबके सामने, रानियों के सामने प्रश्न कर रहे हैं, क्योंकि रानी अभी भी परेशान है कि भगवान का सरदर्द हो रहा है, अभी भी बैठे हुए परेशान होकर, भगवान ऐसे बैठे हुए हैं। तो कह रहे हैं कि इतनी सारी रज, हाँ सबने ऐसा करके दे दिया है मुझे, तो आपने उनको बताया नहीं कि उनका परिणाम क्या होगा? हाँ मैंने बताया उनको परिणाम क्या होगा। तो उन्होंने कहा है कि सर दर्द अंश मात्र में भी कम होगा तो अनंत काल तक नरक की यातना भोगने को हम तैयार है। तो जब नारद मुनि ने उत्तर दिया, भगवान ने सारी रानियों को देखा, ऐसे सब रानियों ने सर झुका दिया अपना। तो वो समझ गए कि इसमें क्या विशेष बात है। और ये अवस्था केवल गोपियों की नहीं है, ये ग्वाल बालों को भी ये अवस्था है, वो कुछ भी कर सकते हैं भगवान के लिए। तो हम पढ़ते हैं ना कि ग्वाल बालों ने कहा कि अरे वो ताल वन में कितने अच्छे ताल के फल है। तो हम तुमको पढ़ने को क्या लगता है? हाँ ग्वाल बालों को ना बहुत इच्छा दिखाने की, इसलिए उन्होंने भगवान को कहा कि हमको तालवन लेके जाओ, वहाँ राक्षस है धेनुकासुर, वो खाने देता नहीं हमको, कुछ करो बल्लू भैया आप कुछ करो उनको, थोड़ा हमारे को खाने की इच्छा। और इतना खुशबू आ रही है, इतना सुगंध आ रही है, इतने दूर से यहीं से मुंह में पानी टपक रहा है, लेकिन कब मिलेगा खाने को? अभी इतना ना आप पढ़ेंगे वर्णन, आप जरूर पढ़िए, ग्वाल बाल सब बलराम भैया को बता रहे हैं कि हमको वो फल खाना है। लेकिन आचार्यगण हमको समझाते हैं, बाह्य रूप से क्या लगता है हमको कि ग्वाल बाल ना हर जगह पर उनको खाने पीने की इच्छा मन में हुआ करती थी, लेकिन आचार्य बताते हैं कि उनको दिल में इच्छा ये थी कि इतनी स्वादिष्ट सुगंधी फल जो है ना वो कृष्ण को मिलने चाहिए। लेकिन अगर कृष्ण को आपको वो खाना चाहिए तो कृष्ण कभी जाएंगे नहीं वहां पर, क्योंकि उनके कृष्ण के लाइफ में इंपॉर्टेंट क्या है? ग्वाल बालों को खुश करना। वो कृष्ण को अगर बताया जाए कि हमारी ये इच्छा है ना कि वो ताल के सुगंधी और स्वादिष्ट फल जो है वो आपको खाने चाहिए, वो बड़ा आनंद आएगा आप खाएंगे तो कृष्ण को बिल्कुल ध्यान ही दे देंगे उसके ऊपर। अगर कृष्ण को वो खिलाना है तो उनको पता है हम अपना बहाना बताएंगे तुरंत जाएंगे वो, तो उन्होंने अपना नाम बता के हमको खाना है, दिल में क्या इच्छा उनकी है उनको खिलाना है। तो वैसे भगवान कैसे होते हैं, वो अपने ज्यादा उनकी इच्छा पूरी करने में लगे हुए हैं, इसलिए वो बलराम जी को लेकर चले गए वहां पर, वो पूरा लीला किया उनको संतुष्ट करने के लिए। तो ग्वाल बाल भी खुद के लिए इच्छा नहीं करते हैं, हर उनका ध्यान जो है वो उनकी संतुष्टि में, उनके मुंह में से भी खाना निकाल कर खाते ना तो वो उनका आनंद मिलेगा ऐसे करने से, फिसले करते वो। भगवान को चिढ़ाने के लिए या तो कष्ट देने के लिए नहीं करते, उनको पता है कि ये करने से उनको बड़ा आनंद आएगा, इसलिए वो उनके डब्बा में छीन के खाते हैं, उनके मुंह से भी छीन के खाते हैं। ऐसे भगवान खाने जाते हैं तो उनके हाथ से छीन के लेके भाग जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि बहुत आनंद आएगा उनको। और इनकी धमकियां इतनी इंपॉर्टेंट है उनके लिए। जैसे एक बार ऐसे वो गए थे उधर काम में, मन में गाय चरा रहे थे, तो गोपियां आई वहां पर, अरे हमने बोला कल ही हमने सुना था कि आप ना पिछले जन्म में राम थी और बल्लू भैया लक्ष्मण थे। तो कृष्ण बोलते हैं क्या तो ग्वाल बाल क्या बात कर रहे हो, कहाँ से सुना आपने ये, पागल हो गए क्या आप? मतलब ऐसे जैसे मराठी बोलते ना कि तक आवता में नहीं, मुझे एज इफ यू डोंट नो एनीथिंग। तो गोपियां बोले देखो ज्यादा होशियारी मत करना, हम सब जानते हैं, आपको अपना राम का लक्ष्मण का रूप दिखाना ही पड़ेगा, तो हम आपसे बात नहीं करेंगे। अरे बात नहीं करेंगे मतलब, हाँ बोलो अभी अभी दिखाता हूँ, आँख बंद करो, चरण दिखा दिया। कितना इंपॉर्टेंट है गोपियों का एक जरा सी धमकी जो है ना उनके लिए सर्वस्व है वो। अभी गोपियों ने बोला कि आपने बैल का वध किया, अरिष्टासुर का वध किया, आपका बड़ा धर्म का अपराध किया आपने, बड़ा जघन्य पाप किया आपने, आपको सारे लोकों में जाकर सारे धाम में जाकर तीर्थ में जाकर स्नान करके आना पड़ेगा, तब तक हम आपसे बात नहीं करेंगे। भगवान को ये बात असह्य हो जाती है कि गोपियां मुझसे बात ही नहीं करेंगी तो मेरा जीवन ही व्यर्थ है, मैं क्या करूंगा जीकर, थोड़े उपाय बताओ उपाय बताओ। तो जाओ सब जगह स्नान करके आओ। तो वो क्या कहते हैं बताएं, मैं जाऊंगा लेकिन आप, मैं वहां पर जाकर स्नान करते हुए आप नहीं देखेंगे तो आप बोलेंगे आप गए ही नहीं, तो इसलिए मैं सारे धामों को यही बुलाता हूं और आपके सामने उनका जल इकट्ठा करके आपके सामने स्नान करता हूं ताकि आपको यकीन हो जाए कि मैंने किया है। तो उनको प्रसन्न करना उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है, ये यहां का रहस्य है। और वो भूमि में हम लोग आए हैं। हाँ अभी मैंने सोचा कुछ था लेकिन कहा कुछ और ही, ये ऐसे ही होता है हमेशा, समय भी बीत जाता है उसके अंदर। कोई बात नहीं, अपने पास समय भी पर्याप्त है, आगे भी बोलते रहेंगे, कोई बात नहीं। अभी ये सब जो राज की बातें रहस्य की बातें ब्रज में होती है वो अगर समझना है तो ये गोपियों के और ब्रजवासियों के अंदर जो गुण है ना वो हमारे को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हमारे अंदर अहम और ममेती, यानी कि ये मैं हूँ और ये मेरा है, ये भाव होता है, उससे हमारी इंद्रियां जो है दूषित हो जाती है। और उन दूषित इंद्रियों से जो अहम और अहंता और ममता, यानी कि मैं महान हूँ और ये मेरे संबंध में आई हुई चीज़ें ये मेरी है, ये दो अहंता और ममता कहते हैं। ममता यानी अपने संबंधित वस्तुओं में आकर्षण, और अहंता मतलब मैं बहुत महान हूँ। ये अहंता और ममता के कारण हमारी इंद्रियां दूषित हो जाती हैं और हम लोग भगवान से अलग कुछ कार्य करते रहते हैं, उससे पाप और पुण्य बनते हैं, उससे हम कर्म बंधन में फंस जाते हैं, उसके इसलिए बार बार हम लोग यहाँ पर आते रहते हैं। ये हमारा चक्र है, अहंता ममता कर्म पाप पुण्य फल, पाप पुण्य फल का बंधन और पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, इस चक्र में हम लोग फंसे रहते हैं। तो जब तक ये इंद्रियां शुद्ध नहीं होती है तब तक हमें भगवान की अनुभूति नहीं हो सकती है, और डायरेक्टली हमारे इंद्रियों के द्वारा भगवान को हम समझ नहीं सकते हैं, तो क्या करना क्या है फिर? तो सहज मार्ग एक ही है, भगवान के भक्तों की सेवा। मद भक्ता पूजा व्याधिका, भगवान ने कहा एक बार आप मेरी पूजा नहीं करो चलेगा, मेरी पूजा में मिस्टेक करो तो भी चलेगा, लेकिन मेरे भक्तों की पूजा करो, भक्तों की सेवा करो, भक्तों को संतुष्ट करो। यहाँ तक कि विधान दिया है शास्त्र में, अगर आप मंदिर में पूजा करते हो, उसमें आरती कर रहे हैं और अकेले हो, मंदिर में कोई नहीं है और कोई मेहमान आता है, तो कहते हैं आरती रोक कर वो मेहमान की सेवा करके संतुष्ट करके शांत करके उनको स्थिर स्थावर करके फिर बची हुई आरती कंटिन्यू करनी चाहिए। ऐसे हरिभक्ति विलास में सनातन जी महाराज ने लिखा है, क्योंकि भगवान का आदेश है, वो जिनकी पूजा आप कर रहे हैं उनका ही आदेश है, बंद करो मेरी पूजा, मेरे भक्त की सेवा करो। तो भक्त कितना भी तुच्छ दिखने वाला हो या बड़ा हो या महान दिखने वाला हो, संत दिखने वाला हो या तो एकदम यकश्चित हो, कोई भी हो भक्त हो, उसकी संतुष्टि भगवान का दिल जीतने वाली सबसे बड़ी पूंजी है। किसी भी सामान्य भक्त को अगर आप संतुष्ट करते हो भगवान का दिल आप जीत लेते हो। ये अगर यहाँ का रहस्य सीखना है तो ये सेवा जो है वो हमको अपनाना पड़ेगा, केवल बरसाना कैंप में आने के बाद नहीं, हर समय बंबई में भी, दिल्ली में, मद्रास में, जहाँ पर भी रहोगे आप, तो ये सेवा भाव आपको बनाए रखना पड़ेगा। तब जाकर भगवान आपके हो जाएंगे, हमारे हो जाएंगे। नहीं तो फिर वो इतना बड़ा वैकुंठ का ऐश्वर्य, इतना अनंत वैकुंठ ब्रह्म ज्योति में विराजमान है, अनंत लक्ष्मियां सेवा कर रही है, अनंत दौलत है उनके पास, ऐश्वर्य है, कुछ कमी नहीं है ऐश्वर्य में, वो सब कुछ छोड़ के और मैं भगवान हूं इस बात को भी छोड़ के एक सामान्य व्यक्ति बनकर भगवान ब्रज में क्यों आते? केवल एक चीज के लिए आते हैं, अपने भक्तों को संतुष्ट करने के लिए। बाकी तो कैसा है ना, वो ऐसा एक ब्रजवासी बहुत सुंदर बताते हैं कि जैसे मामा अपने भतीजे क्या कहते हैं भांजे को खेलने के लिए खिलौने बेचता है ना, तो खेलते खेलते बालक उसको तोड़ भी देता है तो मामा नए खिलौने बेचता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। वैसे ही कंस मामा ने ऐसे राक्षस के रूप में बहुत खिलौने भेज दिए, भगवान ने सबको तोड़ दिए, तो ये टूट गया तो और भेज दिया उसको भी तोड़ दिया तो वो तो खेल था उनका, लेकिन रियल पर्पज वो नहीं था खेल तो राक्षसों को वो खिलौने को तोड़ने का, रियल पर्पज तो ब्रजवासियों को आनंद देने का था। इसलिए वो पेट के बल गौशाला में गोमूत्र गोमूत्र गोबर के मिक्सचर के ऊपर स्केटिंग कर रहे हैं, बैल की पूछ पकड़ के, बैल के बछड़े की, हाँ सीढ़ी पे लटक रहे हैं और रो रहे हैं और तोतले तोतले बोल बोल रहे हैं, चलना सीख रहे हैं, बोलना सीख रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, सारी चीज़ें क्यों कर रहे हैं? गोवर्धन को क्यों उठाया उन्होंने? सारे ब्रजवासियों को आनंद देने के लिए, हैप्पी टू मेक द ऑल ब्रजवासीज हैप्पी। रियल पर्पज ऑफ कृष्णाज अपीयरेंस इज टू प्लीज द डिवोटीज। तो अगर उनके लिए उनके जीवन में ये सर्वोच्च उद्देश्य है कि अपने भक्तों को संतुष्ट उनको करना है, तो हम अगर उनका अपने आप को उनके भक्त मानते हैं तो हमारा कर्तव्य क्या होना चाहिए? वही होना चाहिए जो उनका है, वो उनका मिशन है, उनके भक्तों को संतुष्ट करना, था हमको भी वही करना चाहिए। और इसके ऊपर हमारे आचार्य बताते हैं कि ये मत समझना कि जो यहाँ के जन्म लिए हुए हैं उन्हीं को संतुष्ट करना है और बाकी हम लोग हमारे जो फेलो काम करने वाले हैं उनका झगड़ा भी कर सकते हैं, उनको ताना भी दे सकते हैं, उनको ये भी कर सकते हैं। वो कहते हैं कि वो भी ब्रजवासी है क्योंकि वो भी कुछ समय के लिए यहाँ पर ब्रजवास कर रहे हैं और उसी उद्देश्य से यहाँ पर आए हैं जिस उद्देश्य से आप आए हो ब्रजवासियों को संतुष्ट करने के लिए। तो वो भी ब्रजवासी है, ये भी ब्रजवासी है, जब उन ब्रजवासियों की सेवा कर रहे हो इन ब्रजवासियों को असंतुष्ट मत करना, इससे झगड़ा किया, इससे कुछ वाद विवाद हो गया, उसको कुछ ताना दे दिया, उसको कुछ गलत बोल दिया, उसका दिल दुखा दिया, तो वो भी फिर उनको संतुष्टि इनको असंतुष्टि, भगवान की तरफ से फेल। कृष्णा वांट्स एब्सोल्यूट परफॉर्मेंस, नॉट डिफरेंशियल परफॉर्मेंस, है ना। दो तरह का परफॉर्मेंस नहीं चाहिए, आप प्रभाव नहीं चाहिए। अरे ये तो बंबई के लोग हैं, ये तो मेरे 10 साल के बाद में आए भक्त, क्या समझते हैं अपने आप? मेरे पहले बाथरूम में चला गया गर्म पानी, मैं बना के रखा था, वो खुद जाके स्नान करके आया, क्या समझता क्या अपने आप को? मैं कंप्लेन करूंगा उसको अभी, हेड को, इसको तो तरीका सिखाओ उसको, कुछ एटिकेट नहीं, कुछ नहीं ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती रहती है। लेकिन हमको ध्यान रखना चाहिए जितना ज़रूरी इन ब्रजवासियों को संतुष्ट करना है उतना ही ज़रूरी हमारे साथ में जो सेवा करने आए हैं उनको भी संतुष्ट रखना है। हम सबकी सेवा करने के लिए आए हैं, जो सब लोग जो सेवा करने के इच्छुक हो उनके हम सेवक हैं। चैतन्य महाप्रभु क्या बताते हैं कि हम केवल कृष्णदास नहीं हैं, हम लोग गोपी भरतुर पदकमल और दास 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 अनुदास हैं, उन सभी कृष्णदासों के दासों के दासों के हम दास बनना चाहते हैं, ये हमारा परमोच्च गोल है हमारा। इसलिए कभी कभी चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय को क्रांतिकारी संप्रदाय कहते हैं कि उन्होंने जो कुछ कहा है ना वो बिल्कुल समझ के भी बाहर है। क्या बोल रहे हैं? बोलते हैं कि तृण से पत्ते से भी नम्र बनो, वो तो सुनने में अच्छा लगता है बहुत, पेड़ से भी सहनशील बनो, ये तो इम्पॉसिबल है ऐसी चीजें बता के रखी है। वो भी तो थर्ड श्लोक में है, लास्ट श्लोक तो बहुत दूर है अभी, पिनस्टु माम, कुचल दो, ऐसे लास्ट में बोल रहे हैं। तो अभी ये तीसरा श्लोक को फॉलो करें कि लास्ट का फॉलो करें कि पहला फॉलो करें कि सेकंड फॉलो करें, इतनी कठिनाई है। लेकिन क्रांतिकारी लक्ष्य रखा, देकर रखा है आपको, आपको दास दास अनुदास ही बनना है, तब जाकर मेरा ध्यान आपके ऊपर आएगा। तब तक आप मेहनत करते रहो, तपस्या करते रहो, व्रत पालन करते रहो, हरि बोल, बेस्ट ऑफ लक, यही कहना है उनका। तो अल्टीमेटली फिर सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति जो होता है ना उसकी श्रेष्ठता भगवान कैसे नापते हैं? वो कितना नम्र है और कितना सेवा भावी है, वो हाउ मच सब सर्वियंट ही फील्स हिमसेल्फ टू अदर्स, ये उनका मापदंड है। आप कितने पढ़े लिखे हो, कितने अधिकार में हो, कितने पद में हो, कितना प्रभावी हो, सब कुछ ओके है, क्योंकि वो भगवान का ही दिया हुआ है। आपका क्या है उसके अंदर? अगर आपके अंदर वो सेवा भाव है तो वो सेवा भाव आपका खुद का प्रोडक्शन है जिसको देखकर भगवान प्रभावी होते हैं। तो आइए आज का कथा का विषय कल करेंगे, लेकिन आज की कथा को यहां विराम देते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।